16 रुक्मी को साथ लेकर हमने कुंडिनपुर में प्रवेश किया। अपनी सेना की पराजय हो गई है, इस खेत की अपेक्षा पुत्र 35 वर्ष बाद नगर में लौट आया है, यही संतोष भीष्मक राज को अधिक हुआ। विदर्भ के पुरातन राजभवन की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते अंगराज एक विशेष सीढ़ी पर रुक गए, जैसे पहले मिथिला में रुके थे वैसे ही। वही भाव, वही विचारमग्न शांति पे ही भावपूर्ण पानीदार नीली आंखें। रुक क्यों गए, मैंने पूछा। शोण, सब लोग यह मानते हैं कि श्री कृष्ण ने बलात् रुक्मिणी का हरण किया, परंतु यह अनुचित है। उन्होंने रुक्मिणी की रक्षा की। रुक्मिणी का विवाह यदि शिशुपाल से हो जाता तब निश्चय पियर छोड़ते ही वह इस पयोष्ठ नदी में कूद पड़ती। इसी सीढ़ी पर श्री कृष्ण के साथ बाहर निकलते समय आनंद के तथा अपने भाई के मन को ठेस पहुंचाने के कारण दुख को मिश्रित आंसू उस वीर स्त्री के नेत्रों से ढुलक पड़े होंगे। वे क्षण भर भाव विभोर हो गए, एकटक को सीढ़ी की ओर देखने लगे। मन ही मन वंदन कर हम उस सीढ़ी पर चढ़े। भीष्मक राजा ने लटवाक पक्षियों के मधुर मांस का भोजन आग्रहपूर्वक सबको परोसा। वह दिन फाल्गुन की पूर्णिमा का था, इसीलिए संध्या समय के लगभग हम कुंडिनपुर छोड़कर पुलिंदों के राज्य की ओर चल पड़े। रुक्मिणी सीमा पर आकर हमको विदा किया। जय पराजय की सीमा रेखाएं स्नेह में विलीन हो गई। तापी नदी पार कर विंध्य पर्वत की ओर हमारा प्रवास प्रारंभ हो गया। इस विंध्य पर्वत के किनारे से एक मार्ग दक्षिण की ओर गया था, उसको दक्षिणापच कहते थे। उस मार्ग से दक्षिण की ओर बहुत नीचे जाने पर अश्मक, गोप और मल्ल, इन तीन राष्ट्रों का मिलकर महारठ देश था। दक्षिणापथ इतना संकीर्ण था कि उस पर हमारे अजस्त्र हाथी चल नहीं सकते थे। इसके अतिरिक्त मध्य में घनघोर दंडकारण्य था। इस जैसा घना अरण्य इससे पहले हमको कहीं दिखाई नहीं दिया था, इसीलिए महारठ देश छोड़कर हम पुलिंद देश को लक्ष्य बनाकर उत्तर की ओर मुड़ गए थे। वैसे महारठ की गणना आर्यावर्त के अंतर्गत होती भी नहीं थी। दक्षिणापथ छोड़कर विंध्य के किनारे से हमारी सेना ने नर्मदा पार की। निषद पर्वत सामने आया। इस निषद पर्वत पर ही निषाद राज हिरण्यधेनुक का पुत्र एकलव्य रहता था। गुरुद्रोण को दक्षिणा के रूप में हाथ का अंगूठा देकर सभी शिष्यों में अग्रस्थान प्राप्त करने वाला एकलव्य सिंह की तरह उस पर्वत पर निर्भय विचरण करता था। अंगूठा न होते हुए भी बीच की दो उंगलियों से प्रत्यंचा तान कर मिश्र पशुओं को तथा शत्रुओं को लक्ष्य बना रहा था। हमारे कुशल दूत सभी जानकारी प्राप्त कर प्रतिदिन हमारे पास आया करते थे। उन्होंने एकलव्य को देखा था। परीक्षा होने पर भी वह अवसर हम लोगों को नहीं मिल सका। निषद और शक्तिमत इन दो पर्वतों के बीच एक घाटी थी, उसी में से होकर अपनी सेना को पुलंद ले जाने के लिए हम विवश थे। पहले पदाति बाहर निकलकर हमने बात की आहट लेके सम्मुख स्थित पुलिंद राज सचेत हो गया है क्या। वे शांत थे। कदाचित उन्होंने सुविधानुसार यह सोच लिया होगा कि हमारी सेना विंध्य, निषद और शुक्तिमत इन पर्वतों की लंबी आड़ी पंक्ति लांग कर नहीं आएगी, परंतु बांबी में जैसे चींटियां अवरत बाहर दौड़ती रहती हैं, वैसे ही घाटी से बाहर निकलकर फैले हुए लक्ष लक्ष सैनिकों को देखते ही पुलिंद नगर के अधिपति सुकुमार और सुमित्र दोनों भाई सावधान हो गए। पुनः संग्राम, पुनः रक्तपात, पुनः बाण वर्षा, अब तो यही हमारा जीवन हो गया था। जो कोई मिले उसका सामना करने के लिए ही हम बाहर निकले थे। एक दिन में ही पुलिंद का पतन हो गया। उनको इतना भी अवसर नहीं मिला था कि धैर्यपूर्वक प्रतिकार के लिए संगठित होते। सुकुमार और सुमित्र दोनों ही युद्ध में मूर्छित हो गए। हमारे वैद्यों ने उन्हें सचेत किया। यूँ हमारी शत्रुता तो किसी से नहीं थी, जो विरोध था वह चैतन्य शरीर के भीतर अजय अजय कहलाने वाले अहंकारी मन से था। अचेतन शरीर से नहीं, हमारे सेनापति ने हमको यही दीक्षा दी थी। उन्हें शस्त्र, मूर्छित शरणागत सेवक और स्त्रियों पर शस्त्र चलाने वाले के लिए भी दंड ही एक ही दंड था। उसी शस्त्र से वह अपने हाथों से अपने ही ऊपर समस्त सेना के सामने चला ले, निःशब्द भाव से प्राण छूटने तक। परंतु ऐसा अवसर कभी हमारे किसी सैनिक पर नहीं आया। उसका श्रेय सेनापति के अनिंद्य निष्कलंक चरित्र को था। उनका आदर्श हिमालय की भांति सबके सम्मुख शुभ्र भाव से खड़ा था। वे जिसको अर्घदान देते थे उस अलांक्षण दीप्तमान सूर्य की तरफ। पुलिंद राज से संपत्ति के रूप में कर ग्रहण कर हमने शिशुपाल के नगर शुक्तिमती की ओर प्रणय किया। दिन और रात के धवल श्याम पुष्प गुथता हुआ काल रूपी माली माला बनाने का प्रयत्न करता हुआ पालथी मारे बैठा था। इन 4 महीनों में हम उसने कितने पुष्प अपनी माला में गुथे थे इसका हमें पता नहीं था। 17 दशाणा नदी में नागरमोथा के पौधों को कुचलते हुए हमने शेदी राज शिशुपाल की शुक्तिमती राजनगरी की को चारों ओर से घेर लिया। शिशुपाल इंद्रप्रस्थ में मारा जा चुका था, इसलिए उसका पुत्र दृष्टकेतु चेदियों का नेतृत्व कर रहा था। जीवन भर श्री कृष्ण से वैर करने वाला राजा का पुत्र था वह। उसने अपनी भगनी करेणुमति नकुल को दी थी, इसीलिए पांडवों से उसके संबंध घनिष्ठ हो गए थे। वह हमारा विरोध करेगा यह निश्चय था, परंतु जो विजय पर विजय ही प्राप्त करते जा रहे थे, ऐसे कुरु सैनिक अब किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे। शुक्तिमती का रक्षण करने के लिए दृष्टकेतु अपने बंधुओं सुकेतु कर्कश तथा शरभ के साथ एक एक दिशा से हमारी सेना से भिड़ गया। वित्रवती के किनारे पुनः अस्त्रों के स्फुलिंग अंतरिक्ष में उड़ने लगे। वीर योद्धाओं की गर्जनाओं से वित्रवती की धड़कती हुई लहरें और अधिक स्पंदन करने लगी। पात्र बाणों से भरा जाने लगा। दृष्टकेतु महान योद्धा था। इतनी चपलता से वह चारों दिशाओं में घूमकर अपनी सेना को प्रोत्साहित कर रहा था कि सभी सैनिकों को बार बार उसके दर्शन हो रहे थे। हमारे सैनिक तो यह समझने लगे कि दृष्टकेतु चार है। अपने पिता के साहसी सुदृढ़ उसकी नस नस में भरी हुई थी, परंतु हमारा सेनापति स्थान स्थान पर उसको पकड़कर निशस्त्र कर रहा था। दो प्रहर तक चेरी दृढ़ता से लड़ते रहे, परंतु जैसे भैया के एक मर्म भेदी बाण से दृष्टकेतु घायल होकर नीचे गिरा, उनका आत्मविश्वास टूट गया। महाबाण में जैसे पित्रवती का जल स्वच्छंद दौड़ता है, वैसे ही वे भागने लगे। घायल अवस्था में ही वे वीर दृष्टकेतु घाव को हाथ से दबाकर अपनी सेना को रुकने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहा था। चेरी देश का पतन हो गया। हमारी विजयी सेना ने शुक्तिमती में घुसकर वित्रवती के जल को मत कर गंदला कर दिया। इस नगर के ठीक उत्तर में मथुरा राज्य था। उस मार्ग से दूर हस्तिनापुर की ओर सूचना लेकर चल पड़ा दूत। जाते हुए वह मथुरा में रुक कर श्रीकृष्ण द्वारा सिंहासन पर बैठाए गए उग्रसेन राजा को हमारे अतलसी राजवस्था स्वर्ण मुद्रा भेंट करने वाला था। भैया के प्रतिज्ञा के अनुसार हमें मथुरा पर आक्रमण नहीं करना था, इसीलिए यह विशिष्ट भेंट थी। चेदी राज्य छोड़कर भोज राज्य की ओर हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई। राजा थे पिता पुत्र कुंती भोज और पुरुजीत। उनका राजनगर भोजपुर अश्व नदी के तीर पर बसा हुआ था। फाल्गुन मास समाप्त होने जा रहा था। अब बसंत ऋतु का राज्य अवनी तल पर अवतरित होने वाला था। बसंत के कारण प्रफुल्लित धरती के पूर्णांग सौंदर्य को जी भरकर देखते हुए पारा पातालवती आदि नदियां पार करते हुए हम भोज राज्य में चरमणवती के किनारे पर आए। चरमणवती निषद पर्वत की घाटियों को चीरती हुई दौड़ने वाली जलदायिनी टेढ़ी मेढ़ी मुड़ती हुए वह आगे चलकर यमुना में मिल जाती है और फिर यमुना से गंगा में। जिस स्थान पर चरमणवती हमारे सामने आई थी वह था अश्व नदी का और चरमणवती का मनोरम संगम अश्व नदी। यह तो हमने अपनी यात्रा में अनेक नदियां पीछे छोड़ी थी, उनके नाम भी अब मुझको अच्छी तरह याद रहे, परंतु अश्व नदी का नाम मैं कभी भूल नहीं सकता था। हो सकता है कि सारथी पुत्र होने के कारण उसके नाम का अश्व मुझे बहुत अच्छा लगा हो। कुछ भी हो, उस नाम में निश्चय ही आकर्षण। संगम तीर पर खड़े रहते समय भैया के मन का भाव जानने के लिए मैंने पूछा, अश्व नदी यह नाम तुम्हें कैसा लग रहा है? वह अश्व की तो दौड़ रही है, इसलिए यह नाम उचित ही है। इसके पानी पर पलने वाले भगवान भी जीवन भर अश्व की तरह दौड़ते ही रहते होंगे। उन्होंने अश्व नदी की ओर देखते हुए उत्तर दिया। इतने में ही एक गोप कन्या पानी पिलाने के लिए शुभ्रवर्णी गाय को लेकर वहां आई। एक मोहक बछड़ा भी उस गाय के साथ था। वह उसके थनों पर आघात करने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु गाय जल्दी जल्दी पानी में घुस गई थी, इसीलिए वह अपनी पूंछ का गुच्छ ऊपर उठाकर उसके बाहर आने की राह देख रहा था। अश्व नदी में एक सूखी हुई लकड़ी का कुंदा इचकोले खाता हुआ बहता जा रहा था। गोप कन्या का आंचल हवा के झोंकों से फड़फड़ा रहा था। मुझे तो दृश्य बड़ा ही मनमोहक लगा। कितना सहज सुंदर था वह शुभ्र सबकी वंदनीय गाय, निरागस वत्स, कलकल बहती हुई नदी। मैं तो स्तब्ध हो गया था। परंतु हमारे सेनापति को न जाने क्या हुआ, वे वायुजित पर से सहसा कूद ही पड़े। आगे बढ़कर संगम के पानी में घुसकर वे उस गाय का कंठबद्ध पकड़कर उसको खींचते हुए पानी से बाहर ले आए। शायद वे उस बछड़े की व्यवस्था देख नहीं सके थे। वे गाय को जल से बाहर लाए तो सही, परंतु योद्धा का वेश होने के कारण उनसे विदका हुआ वह बछड़ा उछलता कूदता कहीं दूर चला गया, न जाने कहाँ। नदी में लकड़ी का कुंदा भी इचकोले खाता हुआ दूर जाने लगा। गाय का कंठबंध ज्यों का त्यों हाथ पकड़े हुए हमारा दिग्विजयी सेनापति अश्व नदी में इचकोले खाते जाने वाले कुंदे की ओर अपलक दृष्टि से देखता हुआ ज्यों का त्यों खड़ा रहा। उसके एक हाथ में कुरुओं का राजदंड था, दूसरे हाथ में गाय का कंठबंध। जाने तो किसी किसी का भाग्य ही ऐसा होता है। तुमने जिसके लिए इतना परिश्रम किया वह बछड़ा ही भाग गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाग्य? दिग्विजयी सेना लेकर युद्ध करते फिरती हो और फिर भी भाग्य के ही गीत गाते हो? वे बुरी तरह गरज पड़े। भाग्य नहीं तो और क्या? मैंने सिर झुका लिया। मैंने क्या अनुचित कहा था यह मेरी समझ में नहीं आया। सोण, भाग्य मानव द्वारा निर्मित सबसे अधिक भयंकर भूल है। उसको मनुष्य के जीवन से जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति सदैव सत्य से दूर भागना चाहता है। नदी में बहते हुए उस कुंदे को देखो, सभी का जीवन ऐसा है। लहरों का सामना करते हुए जीना ही वास्तव में जीना है। उन्होंने नदी की ओर उंगली उठाई। हाथ में कंठ बंद छूट जाने से गाय चली गई। 18 कुंती भोज और पुरीजीत को धूल चटाने के लिए हमने चरमणवती पार की, अश्व नदी का संगम भी लांघा। भोज राजा का राजनगर भोजपुर दृष्टिपथ में आया। महामंत्री विदुर के कथनों में हमने बारंबार यह सुना था कि इसी नगर में बचपन में राजा माता कुंती देवी रहती थी। श्री कृष्ण की बुआ कुंती देवी के संबंधी होने के कारण विदर्भराज भुष्पक ने दूध भेजकर कुंती भोज और पुरीजीत को संधि कर लेने का सत्परामर्श पहले ही दे दिया था। हमने समझा था कि वे हमसे पूरी शक्ति से लड़ेंगे, क्योंकि भोजराज दक्षिण आर्यावर्त में मगधों के बराबर ही संपन्न राजा था। शक्तिशाली सैन्य दल और श्री कृष्ण का आधार, इसीलिए भोजपुर में हमको बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। यादव ने शकर के हमने चरणवती पार की थी, परंतु जो कुछ घटित हुआ वह सर्वथा अनपेक्षित था। और फिर यह विश्व, मानवीय जीवन और दिग्विजय युद्ध, यह त्रयी अनपेक्षित आघात देने वाली ही है। पुरीजीत कुंती भोज ने हमारे कंठ में पारिजात की मालाएं डाली। पारिजात की मधुर सुगंधित मालाओं के सुगंध सहित हमने भोजपुर में प्रवेश किया। भोजपुर चरमणवती के संगम के लिए उत्सुक अश्व नदी के तट पर बसी हुई रमणीय नगरी। अपनी यात्रा में हमको भोजपुर जैसा आकर्षक दूसरा नगर अब दिखाई नहीं दिया था। सभी भवन योजनाबद्ध बनाए गए थे, मार्ग प्रशस्त थे, दोनों ओर अशोक और आम्र के विशाल घेरे वाले वृक्ष छाया कर रहे थे। वसंत के आगमन से वे बौराए हुए थे। उनकी काशाय मधुर गंध चारों ओर महक रही थी। उनसे पुलकित हुए कोकिल सप्त स्वरों में तान ले रहे थे। अब उनके भी दिन थे उड़ानों के, कूकने के। एक कोकिला के तान सुनकर हमारे प्रकृति प्रेमी सेनापति ने राजमार्ग पर जाते हुए राजरथ में मुझसे कहा, छोड़ इन कोकिलों को सप्त स्वरों में कूकते देखकर तुम उनकी आवाज़ से भावाभिभूषित हो जाओ। अरे, ये मादा कौआ के घोंसलों में पले हुए होते हैं, होने दो। उनके रहने से उल्टा मादा कौआ का घोंसला कहीं पवित्र हो जाता है, मैंने कहा। नगर में भवनों के सौंध सौंध पर आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष उत्सुक होकर अनुपम सौंदर्यशाली अद्वितीय सौर्यपुरुष हमारे सेनापति के दर्शन करने के लिए सट कर घिचपिच कर खड़े थे। हमारे सदैव दोनों हाथ जोड़कर सबके प्रेम को स्वीकार करने वाले भैया भोजपुर के राजमार्ग पर अपने उस राज यात्रा में कंधे पर पड़ा हुआ स्वर्ण मंडित विजय धनुष एक हाथ से ऊंचा उठाकर भोजराज के नागरिकों के प्रेम को स्वीकार कर रहे थे। दूर अश्व नदी का एक मोड़ सूर्य किरणों में चमक रहा था। समस्त नगर लताओं, आम्र शाखाओं और कमल पुष्पों की घनी मालाओं से सुसज्जित था। नन्हे नन्हे बकुल पुष्पों की बौछार वायुजित पर पड़ रही थी। भोजों का नेतृत्व करने वाले पिता पुत्रों के साथ हम राजभवन पहुंचे। भोजपुर का राजप्रसाद यद्यपि प्राचीन था, तथापि अत्यंत सुदृढ़ था। जिस समय हमने उस भवन में प्रवेश किया, उस समय संध्या हो चली थी। अस्त होते हुए लंबी सुनहली किरणें उस पुरातन प्रासाद के शिखर को स्पर्श कर रही थी। महाद्वार में पैर रखते समय भैया एक क्षण को वहीं ठहरे। अपना नियम उन्होंने कभी तोड़ा नहीं था। उस राजप्रसाद के महाद्वार में से ही उन्होंने सूर्यदेव को संध्या वंदन किया। रात्रि के भोज के उपरांत भैया ने उन पिता पुत्र से कुछ बातचीत की। अंत में किसी ने सोने की सूचना दी। बहुत दिनों बाद हम मृदुल शैया पर सोने वाले थे। लेटते हुए ही प्रगाढ़ निद्रा आने वाली थी, परंतु निद्रा देवी मुझ पर प्रसन्न नहीं हुई। प्रसाद में किसी एक दासी का सद्योजात शिशु रात भर अविश्रांत चिल्लाता रहा। वह उसे शांत कराने का उत्कट प्रयत्न कर रही थी। साथ ही पवन से प्रसाद की गवाक्षें हवा के झोंकों से धड़ाधड़ टकरा रही थी। हमारे शयन गृह में पत्थर की समय की लौ पवन से जूझती हुई फरफर करती जल रही थी, लेकिन भैया शांतिपूर्वक सो रहे थे। प्रातःकाल नगर छोड़ने से पहले भोजराज ने अपना पुरातन प्रसाद हमें दिखाया। उसमें एक दीवार पर राजा कुंती भोज का विशाल चित्र था। उसमें यह दिखाया गया कि एक विद्यादासी राजा के चरणों पर जल उलेड़ रही है। कुंती भोज का ऐसा चित्र एक वही था। मुझे वह दासी कहीं देखी हुई सी लग रही थी, परंतु निश्चित रूप से कुछ याद नहीं आ रहा था। यह वृद्धा कौन? भैया ने उस चित्र को देखते ही पूछा। उनके भव्य कबाल पर सिकुड़ने थे। यह यहाँ की धात्री नामक एक विश्वसनीय दासी थी। कुंती देवी के समय वह इस भवन में रहती थी। पांडव माता कुंती देवी जिस समय यहाँ से गई, उस समय उनकी यह दासी भी विश्वस्त सेविका के रूप में उनके साथ ही चली गई। भवन में जो लोग पुराने लोग हैं वे उसकी बातें सुनाते हैं, पुरजित ने उत्तर दिया। उस कक्ष के कोने में एक पत्थर की खूंटी थी। पुरजित ने उसको जैसे ही सरकाया, पुरुष भर ऊंचा भाग तत्काल दूर हट गया। भीतर भूमार्ग दिखाई देने लगा। यह भूमार्ग कहाँ जाता है? भैया ने भीतर झांक कर पूछा। इतने में भीतर से एक छोटी चमगादड़ फड़फड़ाते हुए बाहर आई और हमसे टकराते हुए कक्ष के गवाक्ष से बाहर चली गई बड़े ही सहज भाव से। उसके टकराने से भैया का क्रीट धक्का पाकर थोड़ा सरक गया। यह मार्ग सीधा अश्वनदी किनारे जाता है, पुरजित ने जानकारी दी। भैया के सौंदर्यशाली बलदंड व्यक्तित्व से वह अभिभूत हो गया था, समस्त जानकारी स्वयं ही बता रहा था। इस नदी का नाम अश्व नदी क्यों है? इसलिए कि यहाँ के अश्व इस नदी के अतिरिक्त अन्य किसी का कहीं का पानी नहीं पीते, पिता पुत्र एकदम बोले। समस्त राजभवन देख कर हम सामने के विशाल प्रांगण में पहुंचे। वहां बहुत से कुंज थे, उनमें से बाहर निकलते समय पत्थर के एक टुकड़े से भैया के पैर को जोर से ठोकर लगी। अभेद्य कवच के कारण घाव नहीं हुआ, इतना अच्छा हुआ। उनके सुनहले केश गर्दन पर बिखर गए, भौंहें ऊंची कर उन्होंने देखा, ये पत्थर यहाँ बीच में क्यों पड़े रहने दिए हैं? उन्होंने उस टुकड़े की ओर देखते हुए दोनों राजाओं से पूछा। हमको विदा करने के लिए भी हमारे साथ राजभवन से बाहर आ रहे थे, जानबूझकर पड़े रहने दिए हैं। पहले जब कुंती यहाँ थी तब महर्षि दुर्वासा एक बार यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ एक महान यज्ञ किया था। ये पाषाण उस यज्ञ कुंड के ही है। यहीं कहीं विक्षिप्त दुर्वासा के लिए एक पर्णकुटी भी बनाई गई थी। सचिव का कहना है कि उनका यज्ञ महान था, निश्चय ही उससे कुछ महान ही निष्पन्न हुआ होगा, कुंती भोज ने जानकारी दी। उनकी शुभ्र दाढ़ी के केश कुंज की मंद वायु के झोंकों से हिलने डुलने लगे। दुर्वासा, स्वर्ण मैं भूल ही गया, इन्हीं दुर्वासा जी ने मुझे स्वर्ण पत्तियों की भस्म कमल जल में प्रतिदिन बिना भूले प्राशन करने को कहा था। प्रवास में यह छूट गया, अब अगले विश्राम स्थल से तुम इसे स्मरण कराते रहना, भैया ने मुझसे कहा। कुंती भोज और पुरजित से स्नेहपूर्वक विदा लेकर हमने चत्र से सुसज्जित भोजपुर नगर छोड़ दी। अवंती के विंदानुविंद को जीतने के लिए, सुराष्ट्र राज पर टूट पड़ने के लिए। कुछ देर में ही निषद पर्वत की पादभूमि में चरमणवती के उद्गम के पास बसी हुई बिंद और अनुबिंद वालाड्य बंधुद्वय की विख्यात नगरी अवंती आ गई। हिमालय के अखंड समशिखरों जैसे उन बंधुद्वय ने हमारा डटकर विरोध किया, परंतु 3 दिन बाद कृष्ण के फुफेरे भाई राजधी देवी के पुत्र भी हमारे शरण में आ गए, अवंती का पतन हो गया। 19 अवंती के बाद माही नदी पार कर मालवादेश होते हुए हम मार्ग आक्रमण कर रहे थे। असन, लोध्र, ढेरा, पानवली आदि के वृक्ष वसंत ऋतु के आभूषण पहनकर लहलहा रहे थे। पश्चिमी सागर पर से आता हुआ शीतल पवन सेना को कष्ट दे रहा था। मालवों को पराजित करते हुए स्तंभ तीर्थ पार कर हम शुभ्रमती नदी के तट पर आए। यहाँ मालवों का राज्य समाप्त हो गया था। यहाँ से आगे दो छोटे देश प्रारंभ हो रहे थे, अनार्थ और सुराष्ट्र। अनार्थ में पश्चिमी सागर के तट पर श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। द्वारका जाना नहीं था, इसलिए अनार्थ का प्रश्न ही नहीं उठता था। शुभ्रमती के तट पर पड़ाव डाल देने के कारण सेवन में सैन्य की हलचलों के संबंध में विचार विमर्श हुआ। सेनापति की सहमति थी कि सुराष्ट्र देश पर आक्रमण करने से पहले द्वारका दूत भेजकर देख लिया जाए कि श्री कृष्ण वहां है या नहीं, तथा उस दूत के हाथों रत्न, हीरे, सुवर्ण और राजवस्त्र से भरे हुए थाल भेंट स्वरूप द्वारका देश को भेजे जाए। उनकी सम्मति अर्थात आज्ञा ही थी। उस आज्ञा के अनुसार भेंट लेकर 5 दूत द्वारका के दिशा में मार्गस्थ हो गए। सेनापति कर्ण ने द्वारकाधीश को वह भेंट क्यों भेजी थी इसका हमको पता नहीं चला, कभी चलने वाला भी नहीं था। दूत क्या सूचना लाते हैं उत्सुक होकर इसकी राह देखते हुए हम शुभ्रमती के तीर पर ही रुक गए। इससे आगे सुराष्ट्र में प्रवेश करते समय थोड़ी सी मरुभूमि से होकर जाना था, इसीलिए अश्वसाथ शुभ्रमती में ही अपने अश्वों को धोने नहलाने में लग गए। इस प्रदेश में हाथियों का कोई उपयोग ही नहीं था, क्योंकि धूल के कण आंखों में पड़ने पर से वे कष्टप्रद ही सिद्ध होते, इसीलिए सुराष्ट्र पर हस्तिपथक का प्रयोग न कर पदाति लेकर जाना ही अधिक श्रेयस्कर था। यही निर्णय हमने लिया था। सुराष्ट्र से लौटते समय ये पथक बीच मार्ग से आगे आकर हमसे मिलने वाले थे। इसके अतिरिक्त सुराष्ट्र में रैवतक पर्वत पर सिंहों का वास अधिक था, हाथियों को उनसे कोई कष्ट न हो यह उद्देश्य भी उसमें निहित था। द्वारका को गए दूत 4 दिन बाद लौटे। वे जो सूचना लाए थे उसके अनुसार द्वारकाधीश श्री कृष्ण द्वारका में नहीं थे, वे बलराम के साथ पांडवों से मिलने के लिए द्वैपवन की ओर गए हुए थे। इसलिए हमारी भेजी भेंट उनके पुरोहित ब्रह्मगार्ग ऋषि ने स्वीकार की थी। नगर में श्री कृष्ण पत्नी रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रवृंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा और सत्या उपस्थित थे। उनके पुत्र प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, भानु, भौमरिग, चित्रगु, वेगवत, अश्वसेन, प्रहरण, जयत, आयु, अनिल, उन्नाद, हर्ष, ओज, प्रघोष, महाशक्ति, सुबाहु, भद्र और शांति सब ने तत्काल एक राजसभा आमंत्रित कर हमारे भेंट का स्वागत किया। श्री कृष्ण के चचेरे भाई उद्धव ने उस सभा में हमारे दिग्विजयी सेना का गौरवगान किया। अब अनाथ देश को छोड़कर सुराष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए हम स्वतंत्र हो गए थे। प्रभास क्षेत्र जीत कर रायवतक पर्वत का चक्कर लगाकर हमने गिरिनगर को पराजित किया। वहां का राजा सुरथ शरण में आया। विजय के इतने पुष्प हम अपने दिग्विजय की माला में गूंज चुके थे कि माला आधे से अधिक पूर्ण होने लगी थी। सुराष्ट्र से प्रमाणों का कर लेकर सुब्रमति के किनारे किनारे हम आगे बढ़ने लगे। हमारा जो हस्ती दल पीछे रह गया था वह हमसे सौवीरों के राज्य में आकर पुनः मिल गया। फिर आगे का भ्रमण प्रारंभ हुआ। धूल उड़ने लगी। सिद्धपुर नगर पीछे छोड़कर हम पारियात्र पर्वत की पाद भूमि में स्थित वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के पास आए। हमने सुना था कि पारियात्र पर्वत गुफाओं का आगार है। यह पर्वत दक्षिणोत्तर दिशा में अनेक योजनों तक फैला हुआ था। जितनी विशाल मरुभूमि इस पर्वत के घेर कर फैली हुई थी उतनी सुराष्ट्र में नहीं थी। पर्वतों की लंबाई तो बहुत थी परंतु शिखर उदास नग्न खड़े थे। अन्य पर्वतों पर प्राप्त होने वाली गहरी नीली झाड़ियां यहाँ नहीं थी। केवल अखरूट नीम आदि के वृक्षों से तथा सिंहुण तोरण आदि के झंखाड़ों से ढके हुए काले सफेद पाषाणों को टीले दिखाई दे रहे थे। इस देश का नाम ही मरुस्थल था। पानी का अभाव होने के कारण 50-50 योजनों के बाद कहीं कोई ग्राम मिलता था। इसलिए युद्ध का प्रश्न ही नहीं था। पड़ोस में जयद्रथ का सिंधु देश था जिसने कुरुसेना की सामर्थ्य देखकर पहले ही कर भेज दिया। इससे आगे देश था विराटों का मत्स्य। इस देश की राजनगरी पर विराट राजा का राज्य था। उसका पुत्र उत्तर युद्ध कुशल नहीं था इसलिए मत्स्य देश का नेतृत्व विराट के वृद्ध कंधों पर ही था। सिंधु देश के शिवनगर में हम पुनः मरुस्थल लांघते हुए वापस लौटे विराट पर चढ़ाई करने के लिए। पुष्कर उपलाव्य आदि पारियात्र पर्वत की उपत्यका में बसे हुए नगरों को पीछे छोड़ते हुए मरुस्थल समाप्त होते ही लहलही घास के विशाल कछार दिखने लगे। इन कछारों की विपुलता के कारण विराटों का गोधन आर्यावर्त किसी भी देश की अपेक्षा अधिक संपन्न था। स्थान स्थान पर पुष्ट गायों के झुंड कछार में चढ़ते हुए दिखाई देने लगे। मत्स्य देश की सीमा आई। लगभग 500 योजनों के बाद मुख्य केंद्र विराट नगर आया। विराटों के सामर्थ्य कितने ही विराट क्यों न हो फिर भी हमें अपनी विजय का पूरा विश्वास था। अब हम हस्तिनापुर के इतने निकट आ गए थे कि केवल यमुना नदी पार करते ही अपने कुरु राज्य में प्रवेश कर सकते थे। इसीलिए किसी भी प्रकार की सहायता हस्तिनापुर से हमें अल्पावधि में प्राप्त हो सकती थी। मत्स्यों के पराजय सरलता से हो सकती थी। विराट नगर के एक मध्यस्थ पठार पर विराट राजा से हमारी मुठभेड़ हुई। समतल प्रदेश पर हुए इस घनघोर युद्ध में हमारे प्रचंड हस्ती दल ने विरोधियों में आतंक मचा दिया था। विराटों के सेनापति कीचक ने उन्हें रोकने के लिए अपने हस्ती पथक बीच में डाले परंतु हमारे प्रचंड हस्ती संख्या के आगे उसके हाथे टिकते ही न थे। पर विशाल का विक्षुब्ध प्राणियों के पैरों तले सैकड़ों विराट कुचले जाकर गत प्राण हो गए। भड़की हुई गायें जिधर सिंह समाया उधर ही दौड़ने लगी। गोचर भूमि उद्ध्वस्त हो गई। पूर्व अभ्यास के अनुसार हमारे सेनापति ने विराट राज को निशस्त्र कर धनुष का फंदा उनके कंठ में अटकाकर जोर से हिलाते हुए पूछा, राजन तुम अकेले इतनी गायों का क्या करोगे? जितनी संभव हो सके उतनी गायें आज ही मध्य मार्ग से हस्तिनापुर को भेज दो। पराजित विराट ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। कुरुओं के कीर्ति ध्वज के सम्मुख मत्स्य राज विराट नतमस्तक हो गया। हस्तिनापुर की दक्षिण दिशा में हमारी दिग्विजय पूर्ण हो गई थी। अब भी पश्चिम दिशा चैत्र मास समाप्त होने जा रहा था। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के पिघलने से उदय की नदियों में बाढ़ आने से पहले ही पुलिंद त्रिगत वालिक मद्र रोहतक कैकेय और कंबोज देशों को अधिकृत करने की हमारी योजना थी। कर रूप में सैनिक भी प्राप्त होने से हमारी सैन्य शक्ति दिनानुदिन बढ़ती जा रही थी। विराट नगर छोड़ने के लिए हम राजप्रसाद के महादौर पर आए। घोड़े पर आरूढ़ होकर अंगराज के पीछे पीछे मैं वलगाएं खींचता हुआ मंद गति से चल रहा था। पीछे से हस्ती दल आ रहा था। महाद्वार की देहरी पार करते समय मैं क्षण बठारा ताकि अंगराज अच्छी तरह आगे जा सके। इतने में पीछे से निरंतर सूंड घुमाने वाले एक हाथी ने मेरे शिरस्त्राण को अपने सूंड में उछाल दिया। नीचे पाषाण के फर्श पर गिरकर खन खन करता हुआ वह स्थिर हो गया। उसकी ध्वनि सुनकर अंगराज ने तत्क्षण पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ सूंड? शिरस्त्राण गिर पड़ा। मैं नीचे उतर कर उसको उठाने के लिए झुका। यह कोई अपशकुन है? यह वे कह ही रहे थे कि उस बढ़ते मत्त हाथी ने अपना पैर उस शिरस्त्राण पर रख ही दिया। मेरे हाथ में आने से पहले शिरस्त्राण कुचल गया। 20. विराटनगर छोड़ते ही हम द्रुत गति से पड़े। कुरुक्षेत्र छोड़कर दृष्टद्वती नदी पीछे छोड़ते हुए सेना ने कुलिंदों की राजनगरी चंद्रनावती को घेर लिया। राजा कुलिंद वृद्ध था अतः उसका पोष्य पुत्र चंद्रहास रथारूढ़ होकर कुलिंदों का नेतृत्व करने के लिए आ रहा था। राजा कुलिंद को चंद्रहास को अरण्य में प्राप्त हुआ था। अपने पिता का ऋण चुकाने के लिए उसे यह अवसर मिला था। उसने यह नहीं सोचा कि उसका नाम यदि चंद्रहास है तो हमारे सेनापति भीष्म शिष्य हैं। सरस्वती नदी के तीर पर संग्राम प्रारंभ हुआ। चंद्रहास एक निपुण अश्वसात था। अपने सेना में वो विद्युत की तरह चमक रहा था। गर्जना करता हुआ वह कुलिंदों को धैर्य बांधा रहा था। उस पराक्रमी वीर योद्धा पर हिरण्यवर्मा ने एक अचूक बाण फेंका। उसकी घोड़े की गर्दन में तीर घुस जाने के कारण वह वीर सेनापति घोड़े के साथ सीधा सरस्वती के जल में किंशुक वृक्ष की तरह उन्मिलित होकर गिर पड़ा। अपने तरुण नेता को कहीं न देख पाकर कुलिंद सेना इतस्तत भागने लगी। हमने जो राज्य जीते थे उनमें एक भी ऐसा नहीं था जिसके योद्धा सेनापति के आहत होने पर भी धैर्यपूर्वक लड़ सके। यह अनिष्टकारी अभ्यास हमारी सेना में भी किसी को न पड़ जाए, इसलिए कभी कभी हमारे सेनापति घोड़ों से नीचे उतरकर मुझसे यह भ्रांति की सेनापति अंगराज आहत हो गए सेना में फैलाने को कहते थे। पीछे लौटने के मार्ग थे उन पर स्वयं पैदल जाकर चपलतापूर्वक तिरछे खड़े हो जाते थे। जो पथक पीछे भागने के लिए मुड़ते उनके लिए कठोर दंड था। भागने वाले पथकों के योद्धाओं को उस दिन समस्त सेना के लिए स्वयं भोजन बनाना पड़ता था। इसीलिए केवल प्राणपण से लड़ने के सब अभ्यस्त हो गए थे। हम अनुशासन में रहने ते वे इतने बध गए थे कि इस बात को भी भूल गया था कि कुलिंद देश मेघमाला का है। चंद्रावती का पराभव कर वालिक और त्रिगर्त राज्यों को जीतते हुए हम शतद्रु नदी के पास आए। इससे आगे जो देश था उसमें रोहतक केकय यदु ये छोटे छोटे राज्य थे। सामर्थ्य संपन्न एक ही राज्य था शल्य का मद्र राष्ट्र। इन सभी देशों को मिलाकर पंचनद कहा जाता था। यह नाम सार्थक ही था क्योंकि हिमालय से निकलकर पश्चिमी सागर में मिलने वाली शतद्रु पुरुषणी चंद्रभागा वितस्ता और सिंधु इन पांच नदियों के विपुल जल से यह प्रदेश वैभवशाली बन गया था। इनमें से मद्र को पराजित करते ही उसकी प्रतिक्रिया छोटे छोटे देशों पर होगी और वे सभी शरण में आ जाएंगे। यह सोचकर हमने मद्र राज शल्य को लक्ष्य बनाया था। सहदेव और नकुल का सगा मामा रेतायन का पुत्र, इसीलिए शाकल नगर पहुंचने के लिए हम लोगों ने शतद्रु को त्वरित गति से पार किया। चंद्रभागा और वितस्ता के मनोहर संगम पर मद्रो की राजनगरी शाकल बसी हुई थी। शल्य से टक्कर अवश्य संभावित थी। उनके राज्य पर कुरुओं की सेना आक्रमण करने के लिए आ रही थी। यह पता चलते ही वह नगर छोड़कर अपने पुत्र रुक्मांग और रुक्मरथ को साथ लेकर हमें मध्यस्थ पुरुषुण नदी पार न करने देने का निश्चय कर उत्तरी तट पर अड्डा जमाकर बैठ गया। अब तक हमको अपने प्रतिस्पर्धी मिले थे उन सब में अकेला शल्य ही दांव पेच में अतिशय कुशल और बुद्धिमान था। उसका सामना करने के लिए हमने सशस्त्र सैनिकों से युक्त सैकड़ों नौकाएं पुरुषुण नदी में छोड़ दी। अभी वे नदी के मध्य भाग तक भी पहुंचने न पाए थे कि ऊपर की ओर से भागकर आते हुए बड़े बड़े वृक्षों से अचानक वे टकराने लगे। नौकाओं का संतुलन बिगड़ गया और वे उलटने लगी तथा घास के पत्तों की तरह पुरुषुण की धार में बहने लगी। बहकर जाने वाले सैनिकों को शल्य के बाणधारी पथक ने लक्ष्य बनाना आरंभ कर दिया। कुछ इन्हें गिने योद्धाओं को छोड़कर समस्त नौका पथक इस तरह काम आ गए। शल्य की चाल सफल रही। उनके वृक्षों के मार को हाथी झेल लेंगे यह सोचकर हमने 500 हाथियों का एक शक्तिशाली पथक नदी में उतार दिया। परंतु शल्य ने एक और उपाय उनको तहस नहस कर दिया। नदी में छोड़े हुए वृक्षों में उसने नुकीले फलक उल्टे ठोंक दिए थे। जैसे ही वे फलक त्वचा में घुसे हाथी विदक कर दिशा बदल कर धारा में बह चले। उनके रक्त से पुरुषणी का जल लाल हो गया। वे हाथी कहाँ चले गए पुरुषणी ही जाने। दूसरे किनारे पर शल्य हस्तस्थ चमकते स्वर्णित राजदंड के कारण भैया को ठीक ठीक पहचान रहा था। इन तीनों दिनों तक हम उस नदी को पार करने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करते रहे परंतु सफलता नहीं मिली। हमारे उत्साही मन पर निराशा की काली मां छाने लगी। प्रतिदिन सैकड़ों सैनिक नदी पार करने का प्रयत्न करते हुए अकारण प्राण गंवा रहे थे। इसका कहीं न कहीं अंत होना आवश्यक था। युद्ध के अतिरिक्त अकारण प्राण हानि सह्य नहीं थी। चौथे दिन परले किनारे से एक शुभ्र वेशधारी व्यक्ति नाव में आता हुआ दिखाई दिया। सबने शस्त्र संभाल लिए मन में संचित उफान को बाहर निकालने के लिए। ठहरो, अपने सेनापति की निग्रही आज्ञा सुनकर सभी जन विस्मय चकित हो गए। नौका के पास आते ही सब अपने भ्रांति को जान गए। वह शल्य का संदेश लेकर आने वाला राजदूत था। नौका से उतरकर मद्रो का वह साहसी राजदूत सीधा हमारे सेनापति के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने साधारण वंदन भी नहीं किया। कानों के कुंडलों के कारण उसने हम सबके बीच ही हमारे सेनापति को सहज पहचान लिया। संदेश मद्रराज शल्य महाराज का, रुक रुक कर बोलते हुए उसने एक पुलिंदांग राज के हाथ में दे दिया। उन्होंने उसको ज्यों का त्यों मेरे हाथ में देते हुए उस सेनापति संदेश पढ़िए। आत्रवन से ऊपर का अतलसी वस्त्र हटाकर मैंने संदेश पढ़ा। युद्ध कर्म बुद्धिमान क्षत्रियों का कर्म है, सूत पुत्रों का नहीं। जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। क्रोध से मेरे मस्तक के नसें तन गई। इतना घोर आह्वान और अपमान और वह भी किसका? दिग्विजय में असंख्य राजाओं को धूल में मिला देने वाले मेरे प्रिय बंधु का, शल्य जैसे तुच्छ व्यक्ति के द्वारा। संदेश के उस भुर्ज पत्र को फाड़ कर पैरों तले रोदने के लिए मैंने उसे तिरछा पकड़ लिया। ठहरो सोण, यहाँ लाओ। अंगराज ने वस्त्र सहित वह भुर्ज पत्र अपने हाथ में ले लिया। केवल वह अतलसी वस्त्र मंत्रों के दूत के हाथ में देकर बिना कुछ कहे पुरुषुणी की ओर उंगली उठाकर उसको जाने की मूक सूचना दी गई। वह जैसे आया था वैसे नाव से चला गया। भुर्ज पत्र को अंगराज ने कटिवस्त्र के छोर में अच्छी तरह बांध लिया। कल सबको आदेश दिया जाएंगे, इस समय आप जाइए। हमने संतप्त मन के भाव छिपाते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया। रण में गर्जना करने वाले हमारे वीर सेनापति ने वह संपूर्ण दिन एक योगी की तरह पुरुषणी के जल में खड़े होकर अंजलि भर भर कर अग्रदान करते हुए बिताया। अब दिग्विजय के गाल पर डिठौना लग जाएगा, यह सोचकर खिन्नता की घनी छाया सारी सेना पर फैल गई थी। क्षण भर पुरुषणी के पात्र में भैया की अंजलियां जलदान करती रही, हम शिविर में निरंतर करवटें बदलते रहे। पांचवा दिन प्रारंभ हुआ। सबको आश्चर्य हुआ क्योंकि अंगराज रात भर नदी में ही खड़े रहे थे। आह्वान का विचार करते हुए या अपने आराध्य देवता को श्रद्धा के घट अर्पित करते हुए यह समझना दुष्कर था। नदी से बाहर निकलते ही निश्चयपूर्व स्वर में बोले, वीरो, मद्रों के शाकल नगर को अब हम अवश्य ही जीतेंगे। कैसे? मैंने हर्षोत्सुक होकर पूछा। सभी पथक प्रमुखों के मुखों पर आश्चर्य और आनंद की सीमा नहीं रही थी। सोड़, तुम अपना चमकता हुआ राजदंड लेकर सेना में अवृत घूमते रहोगे। उस राजदंड को देखकर पर्ले किनारे पसल यही समझेगा कि सेना में मैं ही हूँ। पृष्ठभाग की ओर से दो अक्षौणी सेना लेकर मैं पिछले मार्ग से पुनः शतद्रु पार करूंगा। उसके किनारे किनारे उद्गम की ओर जाकर कुलूत और द्रोहयुग राज्यों में होकर उद्गम के पास पुरुषणी और चंद्रभागा पार कर रोहतक राज्य में जाऊंगा। शाकल नगर मध्य में रहेगा, एक ओर तुम्हारी सेना रहेगी, दूसरी ओर से मेरी सेना, दोनों के बीच शल्य निसंदेह फंस जाएगा। परंतु इसमें तुम्हें एक सप्ताह लग जाएगा, तब तक हम क्या करें? तुम सौ सौ हाथियों के एक एक पथक प्रतिदिन पुरुषणी में छोड़कर शल्य को उलझाए रखना। जब शल्य जल्दी जल्दी परले किनारे को छोड़ने लगे, तब तुम यह समझ ही जाओगे कि मैंने उस ओर से उसका शाकल नगर घेर लिया है। परंतु यह आक्रमण क्या असावधान राजा पर किया गया आक्रमण नहीं होगा? नहीं, शाकल नगर में पहुंचते मैं शल्य के पास दूध भेजूंगा, जैसे उसने भेजा था वैसे ही, और दूध भेजकर स्पष्ट कर दूंगा यदि सामर्थ्य हो तो अपनी राजनगरी की रक्षा करने के लिए अपुरुषणी छोड़कर जल्दी से पीछे लौटा। यदि वह नहीं आया तो युद्ध का अवसर ही नहीं आएगा, क्योंकि शाकल नगर में शल्य की अधिक सेना बची नहीं होगी। फिर उसके राजभवन पर से उसका ध्वज उतार कर और कुरुओं का ध्वज चढ़ाकर ही लौटूंगा। आदेश! मैंने कुरुओं का राजदंड उनके हाथ से ले लिया और वायुयुद्ध पर आरूढ़ हो गया। अपने अग्रभाग की सेना में घूमने लगा, हस्तस्थ राजदंड को जानबूझकर इतना ऊंचा करने लगा कि वह चमक सके। सच तो यह था कि वायुयुद्ध पर आरूढ़ होते समय मन सकुचाया था। हमारे सैनिक के पृष्ठभाग में जो सेना थी वह पीछे से पीछे की ओर लौट पड़ी। युद्ध के अवसरों पर इसका विशेष प्रयोग न किए जाने के कारण वह अधिक बलशाली थी। भैया का नेतृत्व प्राप्त करते तो वह अधिक उत्साही हो गई थी। शतद्रु पार कर वे पंचनद की पांच नदियों के उद्गम की ओर चल दिए। मेरे घूमने के साथ ही परले किनारे पशल का ध्वजाधारी रथ कुशलता से हलचल कर रहा था। उसने यही समझा कि मैं राजदंड लेकर शुभ्र वायुजित घोड़े पर निरीक्षण करने वाला अंगराज ही हूँ। प्रतिदिन सौ सौ हाथियों के पथक हम पानी में नियमपूर्वक छोड़ रहे थे। शल्य उनका निपात कर रहा था, वह अपने सेना में प्रसन्नता से झूमता घूम रहा था। पांच दिन बाद परले किनारे पर शल्य की सेना एकदम विचित्र हलचल करने लगी। घड़ी दो घड़ी बाद ही सारा का सारा परला किनारा निर्जन होने लगा। अंगराज ने झंझावात की तरह जाकर परले की ओर से शाकल नगर घेर लिया। इस बात का यह स्पष्ट संकेत था, शल्य ने पुरुषणी का किनारा ऐसे छोड़ा जैसे यक्षिणी ने छड़ी फिरा दी हो। आनंदित होकर नौकाओं के अनगिनत पथकों को पानी में धकेलते हुए हमने जयघोष किया, सेनापति अंगराज कर्ण महाराज की विजय हो। इस घोष से आज तक हमारे असंख्य हाथियों को बाहर ले जाने वाले उन्मत्त पुरुषणी भी कांप गई होगी।